ओम शांति। मम्मा की मधुर झंकार जो सीरीज चल रही है, और आज का जो टाइटल है मम्मा की रमणीकता। तो पहले तो ये बताओ, किसी को रमणीकता याद है मम्मा की? कोई कभी सुना ही नहीं है। मम्मा की गंभीरता सुनिए। तो वास्तव में जो गंभीरता है वो दुनियावी गंभीरता नहीं है। मम्मा की मैच्योरिटी है, नॉलेज की, ज्ञान की मैच्योरिटी है, और इस गंभीरता के पर्दे के पीछे रमणीकता छिपी हुई है। क्योंकि जो ज्ञान है, ज्ञान को मम्मा ने इतनी गहराई से समझा, इतना गहराई से उसका मनन चिंतन किया, मन के बिल्कुल अंतिम तह तक कैसे वो चला गया कि संसार की सभी बातों से मां उपराम रही। जैसे मां जो बच्चों को लोरी देती है तो वो गंभीर नहीं होती है, उसमें रमणीकता होती है, हंस हंस के देती है। तो ऐसे ही मम्मा जो ज्ञान की लोरी है वो तभी दे पाती थी बच्चों को, हर समस्या का समाधान करने के लिए रास्ता तभी बता पाती थी जब उन्होंने खुद वो पूरी तरह से अप्लाई किया है। इसलिए मम्मा के जो विशेषता हम पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा एक बात सामने आती है कि मम्मा ने कभी भी मना नहीं किया। जैसे बाबा ने कहा, हां जी का पाठ पक्का गया। तो जो भी ज्ञान की बातें थी, गुह्य से गुह्य बातें, मम्मा ने उनको इतना गहराई से अप्लाई कर लिया कि दूसरों को बताने के लिए बहुत वो रोचक तरीके से बता पाती थी, और उसको स्वीकार करने के लिए, सहर्ष स्वीकार करने के लिए हर कोई उसको तैयार हो जाता था। इसलिए मम्मा का हमने जो चित्र देखा होगा, चित्र में देखा होगा, हमेशा मम्मा जैसे देह में रहते हुए विदेही अवस्था को है, व्यक्त में रहते जैसे अव्यक्त अवस्था को है। तो इतनी इतनी ऊंची स्थितियां मम्मा ने सहज रूप से एक्सेप्ट कर ली थी कि उनको मेहनत नहीं लगी। इसलिए वो कोई भी चीज को सहज स्वीकार करने के लिए उसको बहुत खुशी खुशी स्वीकार करना पड़ता है। अगर हम मुश्किल से स्वीकार करते हैं तो वो हमारे जीवन में सहज रूप से नहीं आती है। तो मम्मा ने इतना सहज रूप से रमणीक ढंग से अप्लाई किया होगा जो दूसरों को बताने के लिए उनको बहुत सहज तरीके से बताया जा सके। इसलिए मम्मा की अचल अडोल एकरस अवस्था रही, इसलिए उनको विद्या की देवी की उपाधि दी गई। इसलिए मम्मा जो है एकरस अवस्था में रही, और जितने भी बाबा ने जो स्लोगन मम्मा के बारे में बताए, हर घड़ी अंतिम घड़ी हुक्मी हुक्म चलाए रहा है, तो ये सारी बातें मम्मा के जीवन में सहज रूप से प्रत्यक्ष दिखाई देती थी। मम्मा वाणी से कम लेकिन चलन से, जैसे बाबा ने कल भी कहा कर्म का भाषण, तो प्रैक्टिकल में जो उनके चलन व्यवहारिकता में दिखता था तो उनको से अपना अप्लाई करने में दूसरे सहज रूप से उसको अप्लाई कर लेते थे। तो मम्मा अनेक प्रकार की विशेषताओं से शोभित थी, उनको हमें अप्लाई करना है। कई बार हम सुनते हैं मम्मा की विशेषताओं के बखान दूसरों के मुख से सुनते हैं जो उनके साथी रहे हैं, कि मम्मा दूसरों को कभी भी तुम या तू कह के नहीं पुकारती थी। पहले उनके प्रति, माने उनके जो मुख से निकलते थे आपका शब्द निकलता था, लेकिन हमने देखा कई बार हम वर्णन तो करते थे लेकिन हमारे जीवन में वो नहीं आया। हम मम्मा की विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि तुम नहीं कहना है, लेकिन हम तो कह रहे हैं। तो उन केवल विशेषताओं का बखान करने से हमारे जीवन का परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि उनको गहराई से, अपने दिल की गहराई से स्वीकार करना पड़ेगा। बड़ों की जितने भी शिक्षाएं हैं जो उन्होंने अपने जीवन के अनुभव में खरी उतारी हैं अपने लाइफ में, उनको जब तक हम प्रैक्टिकल में नहीं लाते तो उनका आशीर्वाद भी नहीं मिल पाता, तो उनकी हमारे ऊपर नजर भी नहीं आती। तो मम्मा की जो भी विशेषताएं हैं उनको हम अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए गहराई से, जो भी मम्मा की जो बातें आती हैं, भले थोड़ी सी बातें हैं, उनको हम अप्लाई करें। जो हम कह रहे हैं दूसरों को उन पता लगना चाहिए कि वास्तव में इन्होंने भी अप्लाई की है, नहीं तो केवल मम्मा मम्मा मुख से कहने से कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा गहराई से उसके बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, उसके ऊपर मनन चिंतन करना पड़ेगा। तो जो मम्मा की पर्सनैलिटी है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, जो मम्मा गुणों की खान, संतुष्टता की पर्सनैलिटी, तो वो हमारे में झलकेगी। अगर हम केवल दूसरों की विशेषताओं का केवल बखान ही करते हैं, वो हमारे केवल मुखारविंद तक ही सीमित रह जाती हैं और हमारे आचरण में नहीं आती हैं, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता समाज के ऊपर। और ना ही वो हमारी लाइफ में आएगा और ना ही हम सेवा कर पाएंगे। तो केवल वो जो कहने और कथनी करने में समानता नहीं दिखाई देगी। तो मम्मा की हर एक बात में कथनी करने में समानता, नथिंग न्यू का पाठ पक्का जो बहन जी ने बताया, तो ऐसे मम्मा के सामने भी तो कितनी परिस्थितियां आई होंगी। लेकिन कई प्रकार कई शक्तियों से मम्मा, जो जैसे समाने की शक्ति है, सहन शक्ति है, ये सब चीजें तो सामना उनको करना पड़ा ना यज्ञ के आरंभिक काल में। जितनी भी समस्याएं यज्ञ को, तो कैसे उन्होंने खुशी खुशी उनको पार किया, मुस्कुराते हुए पार किया। तो उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए अंदर से मम्मा ने अपने को कितना सशक्त बनाया होगा और उस ज्ञान को कितना रमणीक ढंग से, रोचक तरीके से समझा होगा, तभी उसको सहज स्वीकार किया। अगर मम्मा शुरू से ही संसारिक गंभीरता जिस तरीके से कहते हैं उसको अप्लाई करती, तो थोड़ा ज्ञान को समझ पाते हैं। जरूर अंदर में उस गंभीरता के पर्दे के पीछे वो रमणीकता जरूर छिपी थी जो हमको दिखाई नहीं दी। तभी तो उस ज्ञान को मम्मा ने एक सहज तरीके से पूरा पूरा का अप्लाई कर लिया। तो ऐसे अनेक प्रकार की विशेषताओं से संपन्न जो मूर्ति है, विद्या की देवी, ज्ञान की वीणा, ब्रह्मा की बेटी, इतने संसार में अनेक प्रकार की उपाधियों से अलंकृत किया गया है। तो जरूर मम्मा ने अंदर ही अंदर ऐसा गुप्त पुरुषार्थ किया होगा बहुत सहज रूप से, जो हमारे सामने ही नहीं बल्कि पूरे संसार के समक्ष एक बहुत बड़ी उदाहरण बन गई, जो विश्व की प्रथम महारानी बन गई। तो जरूर उनका पुरुषार्थ भी ऐसे सरल तरीके से किया होगा, नहीं तो इतनी कम एज में, 45 की एज में शायद मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो इतनी कम एज में इस ज्ञान को, परमात्म ज्ञान को पूरा आचरण में लाकर और भावा से भी पहले संपन्नता को प्राप्त कर लिया। तो किस तरीके से रोचक तरीके से ज्ञान को उन्होंने अपने अंदर समा लिया जैसे। तो हम सब इन बातों को जो हम सुन रहे हैं मम्मा की जानकार, कोई भी एक एक गुण को हम गहराई से चिंतन करें, उसका अपने में आत्मसात करने के लिए मनन चिंतन करें, उस पर विचार करें और धीरे धीरे उनको अप्लाई करें, तो हम मम्मा के प्रति जो शिक्षाएं हैं, मम्मा की हमारे प्रति शिक्षाएं, उन पर हम खरा उतर पाएंगे। ओम शांति।